Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब आकाश शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है वो तो आप लोग जानते हो, जो कैसा है, माने शून्य है, अर्थात रिक्तता है, अर्थात जहां पर जो है माने अवकाश है, माने कोई व्यवधान नहीं है, ऐसा संकेत कर देते, उसे क्या कहते हैं, का आकाश। तो ऊ जैसे वैसे ही पृथ्वी और द्यौ, मध्य में आकाश। और कहने लगे तो वहां संधि की चर्चा की, यहां संधि क्या है, तो उसी को संकेत करते हैं यहां कि प्रथम जो है वो है पृथ्वी, उत्तर वर्ण जो है वो है द्यौ, और आकाश जो है वो संधि कराने वाला, इसलिए उसे संधि भी कह दिया, आकाश है मध्य में। और कहने लगे उस संधि को कराने में जो बल है वो क्या है, संधान कराने वाला, कहने लगे वो है वायु। अब थोड़ा समझने योग्य ये है, इस संधि को यहां बतला रहे, वहां तो हमारी समझ में आया, हमने उच्चारण किया अ, फिर थोड़ा रुक करके उच्चारण कर दिया उ, तो अ उ के बीच में खाली जगह, और उस तो पूर्व हो गया अ, उत्तर हो गया उ। अब जो ये हमने उच्चारण किया तो प्राणवायु के बल से उच्चारण हुआ, और जो वर्णों की हमने मात्रा स्वर आदि कह दिए उनके माध्यम से उच्चारण हुआ, और उन उच्चारणों को लेकर के मध्य में जो संहिता थी, व्यवधान था, तो वहां संधि हो गई। अब संधि क्या हुई, तो दोनों के उच्चारण को लेकर के कत्व के वो अत्व के धर्मों को लेकर के और उत्त के धर्मों को लेकर के उनकी साम्यता मिला करके और दोनों के एक धर्म को स्थापित कर दिया, तो वहां पर क्या है, ओ धर्म को कर दिया। वो कैसे, तो कल जैसे बतलाया था आ का स्थान क्या है, तो आ का स्थान है कंठ, ऊ का स्थान क्या है, तो उपमनिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ, तो वहां ओ का क्या है, तो कंठोष्ठ, तो इसलिए कंठोष्ठ वाला वहां पर सादृश्यता वहां मिल गई, इसलिए वहां कंठोष्ठ वाला ओ बैठ गया। वैसे गुण संज्ञा तो तीन वर्णों की, अकार की और जो है एकार की और ओकार की, लेकिन ए और आ वहां नहीं बैठा, क्योंकि उनके स्थान मिलते नहीं, तो स्थान की भी सदृशता होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहां संकेत कर रहे कि जैसे वहां पर उन स्थान आदियों के उच्चारण के संबंध को लेकर के सादृशता को लेकर संधि हो गई, वैसे ही पृथ्वी और आकाश और इनमें जो है बल क्या है, जैसे वहां उच्चारण आदि में बल प्राण आदि की शक्ति से उनके धर्मों को उच्चारण हुआ, वैसे ही यहां पर वायु आकाश है उसके बीच की संधि और उसमें जो है वायु क्या है, बल है। अब वायु संधान कराती है तो वायु के संधान के द्वारा क्या होता, तो कहने लगे इसमें वर्षा भी होती है, है? पृथ्वी और द्यौ के बीच में ही सारी की सारी जो है लोकात्मक जो है सृष्टि, स्थूल लोकात्मक सृष्टि सारी कहां है, तो इसी द्यौ और जो है पृथ्वी के मध्य में, इन दोनों के धर्मों को लेकर के ही ये जो है नाना प्रकार का रूप हमें दिखलाई दे रहा है। तो ये कहां देख रहा, यही अंतरिक्ष कह दो आप, पृथ्वी से ऊपर और आग देवलोक के मध्य में, ये सारा का सारा जितना भी जिसे हम जगत शब्द से कहते हैं वो सब दिखाई दे रहा है, और उसी को अधिलोक करके कह दिया गया। तो अब ये सब क्या है, तो संधि रूप है, तो किसको लेकर के, तो एक को तो कह दिया द्यूलोक और एक को कह दिया पृथ्वी, है ना, और उन पृथ्वी और द्यौ को है वायु के संधान को लेकर के और वहां पर उनके उसी अंतरिक्ष में आकाश में और ये सारा का सारा प्रारूप उत्पन्न हो गया। जैसे बुलबुला बना था वो भी कहां बना, वो भी आकाश में ही बना, पानी में, तो उससे पानी तो है उसका उपादान, लेकिन कहां बना, ऊपर उठ करके आकाश में ही बना, है ना, पानी में आ जाएगा तो बुलबुला बुलबुला रह ही नहीं जाएगा, ऊपर उठ करके आकाश में बना। वैसे ही ये सारा का सारा लोक भी जो है क्या है, संधि रूप से विद्यमान है। चाहे वो पंचीकरण के द्वारा हुआ हो और चाहे वो जो है त्रिविधीकरण के द्वारा हुआ हो, लेकिन ये हुआ कहां, तो पृथ्वी और देव के मध्य, और उसमें वायु इत्यादि उसके संधान का हेतु है, आकाश उसमें जो है संगता रूप है, तो उसी आकाश में ये सारी संधि हो गई, तो इसको कह दिया अधिलोक। अब विचार क्या करना, ये समझाने का तात्पर्य क्या है, चाहे पंचकोशों के द्वारा समझाओ है और चाहे ये संगता रूप से संधि के द्वारा समझाओ, लेकिन संकेत ये है कि जो ये निर्मित हुआ है, जो ये संधि हुई है, वो संधि तो विच्छेद से भी विच्छेद भी उसका संभव। अब जब संधि हुई है तो ये नाना रूप आकार आदि हमारे सामने आए और इनका विच्छेद कर देंगे तो क्या रह जाएगा, पृथ्वी और दूसरा देव। पृथ्वी में स्थूलता है, जड़ता विशेष है, और देव कैसा है, विचार करो देव कैसा है। देव जो है अवकाश वाला है, देव में कोई आकार नहीं है। जब आकार ही नहीं तो जड़ता आदि का भी प्रयोग कैसे करोगे। तो देव है आकार से रहे, या जिसे अव्याकृत भी बोल देते हो है, अव्याकृत, और उसी से सारा व्याकृत हो गया। व्याकृत सब संधि रूप है, और किसका संधि रूप है, अव्याकृत का। और अव्याकृत किसे कहते हो, तो कहने लगे जहां पर माया की उपाधि आ जाती है उसी का नाम हो जाता है अव्याकृत। माया की उपाधि से उपहित का नाम ही है अव्याकृत। अब माया की उपाधि से उपहित कौन, तो कहने लगी चेतन ब्रह्म। जब उसने माया की उपाधि आ गई तब उसका नाम अव्याकृत पड़ गया। अव्याकृत का मतलब है जहां कोई भी है व्यक्तता नहीं है। अब उस अव्याकृत से ही फिर आगे है क्या होता है, कहने लगी हिरण्यगर्भ की स्थिति मान ली गई, ब्रह्मा की स्थिति मान ली गई है। चाहे जैसे श्रुतियों के द्वारा उपासना के माध्यम से श्रुतियों का तात्पर्य उसी लक्ष्य की तरफ है, अब वहां पर भी जहां पर आप मानते हो प्रकृतिम तू मायाम विद्धि मायनम तू महेश्वरम, और ये माना फिर उसी से क्या हुआ, महेश्वर से ही मान, ईश्वर से क्या कहा, उसका महेश्वर कह दो, चाहे उसे अव्याकृत नाम दे दो, उस महेश्वर से उस अव्याकृत से क्या हुआ, कहने लगे सत रज तम वाली उपाधि है, इसलिए उस उपाधि के अनुसार क्या हो गया, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। और फिर उनके होने पर क्या हुआ, कहने लगे है लोहे शुक्लाम कृष्णा वह भी प्रजा सृजमाना, फिर नाना प्रकार की ये प्रजा हो गई। ये सब संकेत वहां किया गया। तो चाहे उस तरफ से कहें, चाहे संत रूप से कहें, चाहे जो है अव्याकृत की सृष्टि को लेकर के अव्याकृत हुआ, अव्याकृत से रणगरवादी हुए, और फिर उससे जाकर के आगे को हम श्याम बहुत श्याम प्रजाए करके नाना प्रकार की सृष्टि हो गई। तो ये जो प्रक्रिया जो बतला रहे हैं वो क्या संकेत कर रहे हैं, कहा संधि रूप ये जो भी हम देख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, वो एक संधि रूप है। या संधि रूप यहां करके बतला रहे, या उसी को अध्यास रूप कह दो। अध्यास में भी क्या है, कहा सत्यानृते मिथुनी कृत्य, दोनों की संधि हो गई, दोनों की एकता हो गई, सत्य भी अलग नहीं रह गया, असत्य भी अलग नहीं रह गया, सत्य असत्य मिलकर के एक हो गए और सत्य रूप दिखलाई दे रहे, उसी का नाम क्या है, संधि। वहां अकार नहीं रह गया, उकार नहीं रह गया, और जब नहीं रह गए तो कुछ नहीं रह गया ऐसा नहीं कहते, किंतु क्या कहते, ओकार, और ओकार कैसा है, सत्य रूप दिखलाई दे रहा और एक करके दिखलाई दे रहा। ऐसे ही सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं, और सत्य असत्य की संधि को लेकर के एक सत्य रूप दिखलाई दे रहा। तो सारा जगत हमें कैसा दिखलाई दे रहा, सत्य ही दिखलाई दे रहा। यदि हम कहें असत्य है तो व्यवहार कैसे करो, तो सत्य रूप से ही हम व्यवहार करते। अब वो सत्य कैसा है, संधि रूप है, वो चीज अलग है, लेकिन वो एक सत्य रूप दिखलाई दे रहा है उसका व्यवहार, तो वही संकेत करते हैं ये सारा का सारा जो लोक है वो क्या है, तो कहा संधि रूप है। और संधि रूप कहके क्यों समझा रहे, तो इसलिए समझा रहे हैं कि जहां भी संधि होती है तो दो वर्णों की होती है, दो पदार्थों की होती है, और जब विच्छेद कर देते हैं तो जो संधि रूप एक था वो नहीं रह जाता है और दो अलग अलग, और दो अलग अलग हो जाते हैं, तब उन दो में देखा जाता है कि उनमें जो है सत्य कौन है और असत्य कौन है, इसको ही विवेक कहते हैं। और वही यहां पर संकेत कर रहे हैं, समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है द्यौ और जो है पृथ्वी, इसको ही यहां पर समझाया, सब प्रथम लिया। तो द्यौ एक जो है स्थूल रूप है, जड़ रूप है, और वो क्या नाम पृथ्वी, और द्यौ जो है वो कैसा है, निराकार, आकार से रहित, लेकिन उन दोनों के मध्य में ही एक आकारवान का ग्रहण हो गया। तो किससे हुआ, तो निराकार और साकार दोनों मिल गए है? और एक फिर साकार रूप हमारे सामने आ गए, ऐसा समझ लो। अब ये संकेत करते हुए तो संकेत किसका हो रहा है कि उह आ और उह उ, जैसे हमने कहा तो अ उ क्या है, तो आप जब पढ़ते हो श्रुतियों को श्रवण करते हो तो अ उ का भी आगमन हुआ है। जैसे द्यौ और पृथ्वी ये भी मूल नहीं है, ध्यान देना, ये भी मूल नहीं, स्वतंत्र सत्ताक नहीं है। जैसे अकार उकार भी स्वतंत्र सत्ताक नहीं है, किंतु क्या है, तो कहने लगे ये अकार उकार भी ओम से निस्सृत हैं, इसलिए ओम को क्या कह दिया, ब्रह्म कह दिया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, ओम इतिदम सर्वम है, ये ओम ही सब कुछ है, ऐसा जो कहा जाता, क्यों कहा जाता, क्योंकि उस ओम जो, अब ओम के दो रूप हैं, एक तो व्युत्पत्ति लब्धि रूप है और एक रूढ़ी रूप है, रूढ़ी रूप माने छंदस है, वैदिक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, एक उकार बना करके जहां चंद्रबिंदु आदि रख देते हैं उसे रूढ़ी कहा, और जहां ओम करके लिखते हैं उसे यौगिक कहा, वहां तो मात्राओं की कल्पना, लेकिन उसमें कोई भी कल्पना नहीं। तो ऐसा जो ओम है वो ओम से ही सारे के सारे वर्ण उत्पन्न हुए और सारी सृष्टि जब उससे बतला दी, तो वही वो ओम जो है वही इसका प्रतीक करके वहां भी ग्रहण कर रहे, लेकिन ओम को भी आगे करके यहां कहेंगे, आगे जो शांति पाठ आ रहा है यच्छंदसा मृसवो विश्वरूपम करके, उसमें वहां पर जो है ब्रह्मणा कोशोसी, ये शब्द आएगा, क्या आएगा, ब्रह्मणा कोशोसी मेधया पीत, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का कहा ये ओम जो है वो ब्रह्म का कोष है, ओम जो है वो ब्रह्म का आवरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ओम से भी ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है। तो वहां ओम में एकत्व की कल्पना, उसी एकत्व से जो है अकार उकार, और उसी ओम से फिर जो है उसको यौगिक जो मान लिया, आकार उकार उसमें आ गए, तब उसी के द्वारा जो है आकार से पृथ्वी लोक है ना, अवकार से अंतरिक्ष लोक, ये सब कल्पना कर ली गई, और इस प्रकार से त्रिलोक की कल्पना, तीन विहारती भू भुव स्व उसी से ले ली गई, ये सब प्रक्रिया श्रुतियों में जो समझाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ उकार भी ओम जो है वो क्या है, ब्रह्म का कोष है, आवरण है, अर्थात आवरण है माने ब्रह्म इससे भी आगे है, इससे भी परे, लेकिन ये आवरण ब्रह्म का है तो ब्रह्म के समीपी, इसलिए प्रणवो ही निर्दिष्टो ब्रह्म, ये श्रुति कहती, यह जो प्रणव है, यह जो ओंकार है वो क्या है, ब्रह्म का अत्यंत नजदीकी है, निर्दिष्टो माने नजदीकी है, समीपी है। अब ऐसे उस ब्रह्म को जानना है, उसका ज्ञान करना है, तो अब उसके ज्ञान करने के लिए क्या चाहिए? तब उसने ये संधि आदि की रूपता ले रहे, फिर संधि का विच्छेद करो, विच्छेद करते जाओ तो फिर उसके अंतराल में काढ़ भाव में जाओ तो क्या बचेगा? तब कहने लगे, तब कहीं अंतिम में जाके उस ब्रह्म की स्थिति में पहुंचोगे, और जहां ब्रह्म की स्थिति में पहुंचोगे वहां ओंकार का भी आवरण जब हट जाएगा, और वो आवरण जब हट जाएगा तब न तो वक्ता रहेगा, न श्रोता रहेगा, न लोक रहेगा, न परलोक रहेगा, वहां पर कोई भी, वहां मूल मात्र है। जैसे आप देखते हो पृथ्वी में जल की एक सतह है, लेकिन जल जब शांत पड़ा हुआ है तो जल जल है, पृथ्वी उस पर आवरण है, लेकिन वही जल जो है एक स्रोत के रूप में पृथ्वी को फोड़ के बाहर निकल आता, तब वो जल जो है कैसा कहलाता? बाहर निकला तो सारा जल तो नहीं निकल आया, एक देश विशेष में निकला और देश विशेष में प्रवाहित हुआ तो उसको हमने नदी नाम दे दिया, कहीं सरोवर नाम दे दिया, कहीं स्रोत नाम दे दिया, तो अब वो कैसा हो गया? संकीर्ण हो गया। लेकिन जब यदि पुनः उसी सतह में वो जल चला जाता है तब वो जल जल रहता, लेकिन उस सतह में जो आवरण से युक्त जल है वो हमें दिखलाई नहीं देता। तो जैसे उस जल की अब जो सतह के अंतर्गत जल है वो इतना व्यापक जल है कि उसको हम ग्रहण करने में समर्थ, ग्रहण करते हैं तो सीमित करते प्रयत्न विशेष के द्वारा, है ना, सीमित रूप में, लेकिन संपूर्ण रूप में हम उसे ग्रहण कर पाते नहीं। ऐसे ही ब्रह्म को जिस समय संपूर्ण रूप में ग्रहण कर लोगे तो तुम हो या नहीं हो इसका ही ज्ञान नहीं रह जाता, वहां तो क्या है, वहां अलग ही स्थिति होती। इसलिए जो गॉडफादर कार्यकार में जो अजातवाद की चर्चा कर दी वो इसलिए कर दी, और उसी से फिर यह भी संकेत किया कि उसी से सब कुछ होने वाला भी है, सबका स्रोत सबका अधिष्ठान भी वही है, और फिर किसी का अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान कब नहीं है? पहले तो अधिष्ठान ही कहा जाएगा। अधिष्ठान तब नहीं है जब ब्रह्म का प्रकाश पूर्ण रूप से हुआ, आवरणों की निवृत्ति हो गई, तब वो किसी का अधिष्ठान भी नहीं, लेकिन जब तक आवरण है तब तक वो अधिष्ठान शब्द से कहलाएगा। अधिष्ठान क्यों कहलाएगा? सारे विकारों के होते हुए, सारे विकारों का आधार होते हुए भी निर्विकार रूप से रहने वाला है, इसलिए उसका नाम है अधिष्ठान। ये संकेत कर तो यहां पर भी यही बतला रहे हैं अधिलोक क्या है। तो वह जो जिसे हम जो है परोक्षतया ही जानते हैं, साक्षात्कार तो होता ही नहीं, तो परोक्षतया जिसके लिए शास्त्र के बल पर हम कहते हैं कि वह जो सर्वव्यापक है, अनंत है, सत है, चित है, आनंद रूप है, लेकिन उसी में जो है माया का आवरण। अब कहने लगे माया, तो माया शब्द का अर्थ ही कर दिया, मां माने नहीं है, या माने जो, जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो, वही क्या है? माया। तो ऐसी विलक्षण माया, इसलिए उसे अनिर्वचनी करके कह दिया, उसका निर्वचन नहीं किया, ऐसी विलक्षण माया का आवरण होने पर ही उसका नाम अव्याकृत पड़ा, और अव्याकृत से ही संधि रूप से माने अव्याकृत और एक वो मूल, तो उसको लेकर के फिर जो है व्याकृतता हो गई, और व्याकृतता है संधि रूप, यदि इस संधि को हम विच्छेद करते जाएं तो फिर क्या मिलेगा? तो वही अव्याकृत में पहुंचे, और फिर अव्याकृत में भी जो आवड़ को हटा दिया जाए तो कहां पहुंचोगे? तो कहां वहीं पहुंचेंगे। तो ये कल्प, इसलिए यहां स्थूल रूप से समझाने के लिए संकेत किया कि पृथ्वी और आकाश के, वो क्या नाम, देवलोक के मध्य में जो आकाश, उसी में समस्त पदार्थों की सत्ता हमें दिखलाई दे, और जो भी पदार्थ हैं, मैंने पूरे लोक शब्द से कह दिया, माने जिसमें सभी पदार्थ आ गए, तो लोक ये क्या है? एक संधि रूप है, और संधि का मतलब है दो के द्वारा मिलकर के बना होना। अब वो किससे मिला, बना कैसे बना, तो इसमें ये वायु आदि इत्यादि का सब संधान आदि करके बतला रहे हैं। तो इससे ये संकेत हुआ कि जो ये हम जो संध रूप में या सत्ता रूप में देख रहे हैं, इस सत्ता का हम विश्लेषण करें, विवेक करें, विच्छेद करें। अर्थात विच्छेद का मतलब है तोड़ नहीं डालना, यहां मैंने विवेक करके देखें कि इसमें मूल तत्व कौन है, अमूल तत्व कौन है। ऐसा जब विवेक करने लगते तो विच्छेद होता, तब जैसे अकार उकार समझ में आता वैसे ही आकाश और पृथ्वी समझ में आते। अब जितनी भी वनस्पति हो रही है, जितनी औषधियां हो रही हैं, और जितने भी जो है जीव जंतु हो रहे हैं, वो सब कहां हो रहे हैं? इस पृथ्वी और द्यु को लेकर इसी आकाश में हो रहे हैं। वृष्टि आदि होती है वो सब कहां होती है? कहां? इसी आकाश में होकर के पृथ्वी आदि। अब इसी को सबको लोक शब्द से कह देते, तो अब पृथ्वी है, उधर देव है, बीच में खाली स्थान है, और उस खाली स्थान में ही ये सब वायु इत्यादि के संधान को लेकर के सब व्यवस्था बन जाती। लेकिन ये सारी व्यवस्था होती है और विखंडित भी होती है। क्या होती है? होती है और विखंडित भी होती। अब विखंडित होती है तो कहां जाती है? तो आप कहते हो पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल गया, आकाश का तत्व आकाश में मिल गया, ये सब कहते हो। इसलिए ईसावास उपनिषद ने कहा वहां पर वायु अनिलम है, अथ अमृतम इदम शरीरम भस्मांतम करके। ये क्या है? ये शरीर कैसा हो जाता? कहा भस्म हो जाता। भस्म हो जाने का मतलब क्या? भस्म है कारण, अपने कारण में मिल जाता है, तो जिस कारण से हुआ उसी में वह युक्त हो जाता। इसी प्रकार से यहां पर भी अपने अपने कारण में जो ये संधि हुई है तो अपने अपने कारण रूप में चले जाते हैं, और कारण रूप में चले जाते तो कार्य रूप नहीं रह जाता है, लेकिन कारण तो शेष रहता। अब वो भी कारण यहां पर परंपरा बतला दी, एक कारण ऐसा है जो किसी का वास्तव में कारण भी नहीं, और एक कारण और अन्य कारण कैसे? किसी के प्रति कारण है, किसी के प्रति कार्य है, ऐसा देखा जाता है। तो वही संकेत यहां कर रहे हैं। अब ये जो लोक है इसको बतला दिया कि पृथ्वी लोक और वो क्या नाम, पृथ्वी और देव, इनके बीच में जो क्या है तो कहने लगे आकाश है, और आकाश ही संधि रूप है, और आकाश में जो संधि रूपता है उसको धारण करने वाला, उसका संधान करने वाला कौन है? तो वायु है। लेकिन जो वायु भी संधान करता है तो वायु क्या स्वतंत्र सत्ता वाला? वैसे तो कह दिया तुमेव है प्रत्यक्षम ब्रह्मासी, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तो परोक्ष और प्रत्यक्षतया जितना भी व्यवहार होता है वो वायु के बल से होता है, कहीं इंद्र शब्द से भी ले लिया। तो अब जो है कहने लगे ये भी जो बल है, ये वायु का जो बल है वो भी कहां से? तो वायु भी हुआ, और वायु हुआ है, और उस वायु में जो गति देने वाला है वो कौन है? तो आप श्रुति में बोलते हो, श्रुतियां कहती हैं तद भया बातो पवती, वायु के अंतर्गत भी ये क्रिया शक्ति कब आती है? तो कहने लगे उसकी प्रेरणा से। वैसे माने उसकी प्रेरणा से, बगैर उसकी प्रेरणा से आती नहीं। अब जिसकी प्रेरणा से आती वो तो हमें पता ही नहीं, वो दिखलाई तो देता ही नहीं, हमारी दृष्टि का विषय बनता है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। मन बनता है तो परोक्षतया शब्द से सुनकर के बनता। तो इस प्रकार से संकेत किया ऐसा वायु, लेकिन ये वायु, ये पृथ्वी, ये द्यु और ये संधि रूप, ये सब का जो अधिष्ठान है वो क्या है? तो वह है अव्याकृत। की तात्पर्य इसका, ऐसे उस अव्याकृत में दृष्टि ले जाने के लिए हमको स्थूल से जो है उधर का संकेत करते हुए संधि रूप से बतलाते हैं ऐसी उपासना करें, अर्थात उधर को हम दृष्टि ले जाएं और लोक को इस रूप में समझें। तो लोक क्या है? तो लोक कहने लगे एक निर्मित हुआ है, संधि रूप है, स्वतंत्र सत्ता का नहीं है। ये तात्, स्वतंत्र सत्ता कौन है? तो जो इसका कारण, और कारण की तरफ जाते जाएंगे तो इसी का नाम है उपासना। तो विशेष की तरफ जाना, उससे ही हमारी कीर्ति होगी, यश मिलेगा, और जब विशेष की तरफ जितने जितने जाएंगे तो उतना इतना क्या होगा, तो ब्रह्म का प्रकाश होगा, ब्रह्म तेज की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है इन यहाँ पर जो है इन उपासनाओं को बतलाते हुए तो पहले अधिलोक उपासना का संकेत किया और फिर जो है अधिज्योतिष है जो है उपासना है उसकी चर्चा करते, तो दूसरा अधिकरण बतला रहे हैं अधिज्योतिष। तो अधिज्योतिष में क्या है यहां भी बतला रहे, पूर्व क्या बतला दिया कहा अग्नि, उत्तर रूप क्या है तो सूर्य को कह दिया, तो पूर्व है अग्नि और उत्तर है सूर्य आदित्य और आपा संधि, संधि रूप क्या है मध्य में क्या है का जल, और उसको अभी संधान करने वाला कौन है तो विद्युत। अब यहां पर ये जो है अधिज्योतिष माने प्रकाश रूप लोक की चर्चा कर रहे, माने अधिकार कौन है तो प्रकाश ही जिसका अधिकरण भी है और उसमें जो है उसको लेकर के ही होने वाले पदार्थ संबंधी जो है चर्चा कर रहे। तो यह संकेत किया कि अग्नि है और आदित्य इन दोनों को लेकर के आपा जल संधि और उस संधि को कराने वाला विद्युत, ये संकेत कर दिया। विचार एक करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, पृथ्वी करके जिसको वहां कहा, हम अपने हृदय को पृथ्वी कह दें, हृदय को पृथ्वी कह दें, द्यौ करके जिसको कहा तो हम अपने मस्तिष्क को द्यौ कह दें, मूर्धा कहते भी हो और कल्पना भी शास्त्रों में भी की द्यौ लोक आदि, तो पृथ्वी हो गया हृदय और द्यौ हो गया मस्तिष्क। अब जितने भी आपके हृदय में ज्ञान होते हैं वो किसको लेकर के होते, हृदय और मस्तिष्क की परस्पर है सापेक्षता को लेकर के ही सारे ज्ञान होते। अंतःकरण हृदय व्यक्ति का विद्यमान होता, मस्तिष्क में चोट लग जाती है और कोई नस जो है विदीर्ण हो जाती तो फिर क्या है मस्तिष्क काम नहीं करता जैसे करना चाहिए, और नहीं करता है तो व्यक्ति सारी विस्मृति में चला जाता, देखता है लेकिन कौन है बतला पाता नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ, हमारा ये जो है मस्तिष्क जो है देवलोक कह दिया जाए, हृदय पृथ्वी कह दिया जाए और इसमें बीच में है क्या है तो जिसका संबंध जोड़ने वाले वहां आकाश भी विद्यमान है, हृदय में भी आकाश है और बीच में भी विद्यमान, और उनको लेकर के जो वायु की गति होती है, वायु का स्पंदन होता है और उसमें एक चेतना का भी स्पंदन होता है, उसको प्रकाश शब्द से भी ले लेंगे तो अब उसके माध्यम से ही क्या होता है पदार्थ विशेषों का ज्ञान होता है। तो सारी सृष्टि किसको लेकर के हो रही है, हमारे अंतःकरण हृदय को लेकर के और मस्तिष्क को लेकर के, इन दोनों को लेकर के ही हो रही है। और जब इसमें जो है संधान करने वाली जो वायु और जो वो चेतना यदि शांत जिस समय हो जाती है तो वहां पर ये लोक का ज्ञान भी नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में। तो अब जो है जैसे ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझे, व्यापक समष्टि की दृष्टि से समझे, इसी प्रकार ऐसे ही अधिलोक और ऐसे ही अधिज्योतिष हो, यहां हृदय से ही चेतना और यह की चेतना दोनों मिल जाती तो इसको हमने आदित्य कह दिया और इसको जो है हमने अग्नि कह दिया, क्योंकि हृदय के अंदर अग्नि यदि नहीं होगी तो आप वाणी का प्रस्फुटन भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान तो क्या कहते, गीता में भगवान ने क्या कहा कि सारे अन्नों को भी पचा करके रस बनाने वाला कौन है तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, वहां वैश्वानर का नाम दे दिया उनका, अर्थात सर्वत्र मूल तो वही है लेकिन फिर भी जो है उनके तत्त्व स्थानों को लेकर के, आकार विशेषों को लेकर के, नाम विशेषों को लेकर के उनमें वैविध्य भी है और उनमें एकत्व भी है, लेकिन ये एकत्व और द्वित्व ये सब इनका अधिष्ठान जो है अधिकरण जो है आधार है वो क्या है, वो है ब्रह्म, उसकी हमें जो है उपासना करनी, लेकिन प्रक्रिया इस प्रकार से बतला रहे हैं। तो आगे चर्चा न करते हुए कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान।